संहार श्लोक नंबर बलिश्चोषण सापृष्ट प्रत्यापनेन्द्रिय स्मृति पराजितोपि नाख्यद्य बलि महाराज बलि ने छी उशंसा शुक्राचार्य द्वारा स्पृष्ट स्पर्श से प्रत्यापन्ना पुनः जीवित किया गया। इंद्रिय स्मृति ही इंद्रियों के कार्यों तथा स्मृति की अनुभूति पराजित हरा दिया गया। अभी यद्यपि न इकत्यत शोक नहीं किया। लोक तत्व विचक्षण सांसारिक कार्यों में अत्यंत अनुभवी होने के कारण अनुराग अपात्पर्य शुक्रपाद जी के द्वारा बलि महाराज वैश्विक कार्यों में अत्यंत अनुभवी थे। जब शुक्राचार्य की कृपा से उन्हें होश आया और उनकी स्मृति लौट आई तो जो कुछ हो चुका था उसे वे समझ गए। इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें शोक नहीं हुआ। तात्पर्य यह महत्वपूर्ण बात है कि बलि महाराज को यहां पर अत्यंत अनुभवी कहा गया है। यद्यपि वे हार गए थे तथापि उन्हें तनिक भी खेद न था, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं घटित हो सकता। क्योंकि वे एक भक्त थे इस कारण उन्होंने बिना संताप के अपनी पराजय स्वीकार की। जैसा कि भगवद गीता में भगवान ने कहा है, कर्म नियमाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण भावना भावित हर व्यक्ति को हार जीत की परवाह न करके अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। मनुष्य को कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु द्वारा आदेश अपना कर्तव्य करना चाहिए। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिर उत्तमा। उत्तम भक्ति में मनुष्य सदा कृष्ण की इच्छा तथा आदेशों का पालन करता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में आठवें स्कंध के अंतर्गत इंद्र द्वारा असुरों का संहार नामक ग्यारहवें अध्याय के भक्तिग्रंथ तात्पर्य पूर्ण हुए। तो इसके पहले कई श्लोकों का अनुवाद करना है। कहां से 24 तत्पश्चात इंद्र ने बालों के पिंजर से अपने को मुक्त किया। वह अपने रथ झंडे घोड़े तथा सारथी के साथ प्रकट होते हुए और आकाश पृथ्वी तथा सभी दिशाओं में प्रसन्नता फैलाते हुए वह तेजी से ऐसे चमकने लगा मानो रात बीत जाने पर सूर्य तेजी से चमक रहा हो। इंद्र सबको स्पष्टतः तेजवान तथा सुंदर लग रहा था। वसुधर नाम से विख्यात इंद्र ने जब देखा कि उसके सैनिक युद्ध भूमि में शत्रुओं द्वारा इस तरह सताए जा रहे हैं तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ। तब उसने शत्रुओं को मारने के लिए अपना वज्र उठा लिया। हे राजा परीक्षित, राजा इंद्र ने बल तथा पाल दोनों असुरों के सिरों को उनके संबंधियों तथा अन्यायों की उपस्थिति में अपने वज्र द्वारा काट दिया। इस तरह उसने युद्ध भूमि में अत्यंत भयावह वातावरण उत्पन्न कर दिया। हे राजन, जब असुर नमुची ने बल तथा पाल दोनों असुरों को मारे जाते देखा तो वह संताप कर शोक से भर गया। अतः उसने क्रुद्ध होकर इंद्र को मारने का एक जोरदार प्रयास किया। सिंह गर्जना करते हुए नमुची ने क्रोध में आकर इस्मा का एक भाला उठाया जिसमें घंटियां बंधी थी और जो सोने के आभूषणों से सजाया गया था। वो ऊंचे स्वर में चिल्लाया, अब तुम मारे गई। इस प्रकार इंद्र को मारने के लिए उसके समक्ष जाकर नमुची ने अपना हथियार चलाया। हे राजन, जब स्वर्ग के राजा इंद्र ने इस अत्यंत शक्तिशाली भाले को ज्वलित उल्का की भांति भूमि की ओर गिरते देखा तो उसने तुरंत ही उसे अपने बाणों से खंड खंड कर दिया। फिर अत्यंत क्रुद्ध होकर उसने नमुची के कंधे पर अपने वज्र से प्रहार किया जिससे उसका सिर कट जाए। यद्यपि इंद्र ने नमुची पर अपना वज्र बड़े ही वेग से चलाया था किंतु वह उसकी चमड़ी तक को भेद नहीं पाया। यह बड़ी विचित्र बात है कि जिस सुप्रसिद्ध वज्र ने वृत्रासुर के शरीर को भेद डाला था वह नमुची की गर्दन की खाल को रंच मात्र भी क्षति नहीं पहुंचा पाया। जब इंद्र ने वज्र को शत्रु से वापस लौटते देखा तो वह अत्यंत भयभीत हो गया। वह आश्चर्य करने लगा कि कहीं किसी चमत्कारी ऊंची दैवी शक्ति से तो यह सब कुछ नहीं हुआ। प्रभा जी एक लाइन का तात्पर्य देते हैं, इंद्र का वज्र अमोघ है, अतः जब उसने देखा कि वह नमुची को क्षति पहुंचाए बिना लौट आया है तो वह निश्चित रूप से अत्यधिक भयभीत हो उठा। इंद्र ने सोचा, पूर्व काल में जब अनेक पर्वत अपने पंखों के द्वारा आकाश में उड़ते हुए भूमि पर गिरते थे और लोगों को मार डालते थे तो मैं अपने इसी वज्र से उनके पंख काट लेता था। यद्यपि वृद्धासुर त्वष्टा द्वारा की गई तपस्या का सार समाहार था तो भी इंद्र के वज्र ने उसका काम तमाम कर दिया था। निस्संदेह वही नहीं अभी तो ऐसे अनेक अग्रणी वीर भी जिनकी चमड़ी को अन्य हथियार तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सके थे इसी वज्र द्वारा मारे गए। किंतु अब वही वज्र एक तुच्छ असुर पर छोड़े जाने पर भी प्रभावहीन हो गया है। अतः ब्रह्मास्त्र जैसा होने पर भी यह मेरे लिए अब एक सामान्य डंडे की तरह व्यर्थ हो गया है, इसलिए अब मैं इसे धारण नहीं करूंगा। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब हताश इंद्र इस तरह विषाद कर रहा था तो एक अशुभ देह रहित वाणी ने आकाश से कहा, यह असुर नमुची किसी शुष्क या गीली वस्तु से विनष्ट नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी ने यह भी कहा, हे इंद्र, क्योंकि मैंने इस असुर को वर दे रखा है कि वह कभी किसी सूखे या गीले हथियार से नहीं मारा जाएगा, अतः उसे मारने के लिए कोई अन्य उपाय सोचो। इस अशुभ वाणी को सुनकर इंद्र बड़े मनोयोग से ध्यान करने लगा कि इस असुर को किस तरह मारा जाए। तब उसे यह सूझा कि झाग 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 ही ऐसा साधन है जो न तो गीली होती है न शुष्क। इस तरह स्वर्ग के राजा इंद्र ने झाग के अपने हथियार से नमुची का सिर काट दिया। यह झाग झाग स्पॉन न तो शुष्क थी न आर्द्र। तब सारी मुनियों ने उस महापुरुष इंद्र पर फूलों की वर्षा की तथा माल्यार्पण द्वारा उसे लगभग ढक दिया और संतुष्ट कर लिया। एक लाइन का तात्पर्य है, इस प्रसंग में श्रुति मंत्रों का कहना है, अपां फेनेना नमुचे शिर इंद्रो धारयत। इंद्र ने नमुची को जल की झाग से मार डाला जो न तो सूखी होती है न गीली। विश्वासु तथा परामसु नामक दो गंधर्व प्रमुखों ने अति प्रसन्नता में गीत गाए। देवताओं ने दुंदुबियां बजाई और अप्सराओं ने हर्षित होकर नृत्य किया। वायु अग्नि वरुण इत्यादि देवता अपने विरोधी असुरों को उसी तरह मारने लगे जिस तरह जंगल में हिरणों को सिंह मारते हैं। हे राजन, जब ब्रह्मा ने देखा कि दानवों का पूर्ण संहार तुरंत होने वाला है तो उन्होंने नारद द्वारा संदेश भेजा जो युद्ध रुकवाने के लिए देवताओं के समक्ष गए। महामुनि नारद ने कहा, तुम सारे देवता भगवान नारायण की भुजाओं द्वारा सुरक्षित हो और उनकी कृपा से तुम सबको अमृत प्राप्त हुआ है। लक्ष्मी जी की कृपा से तुम हर तरह से गौरवान्वित हुए हो, अतः अब यह लड़ाई बंद कर दो। शिशुदेव गोस्वामी ने कहा, नारद मुनि के वचनों को मानकर देवताओं ने अपना क्रोध त्याग दिया और लड़ाई बंद कर दी। वे अपने अनुयायियों द्वारा प्रशंसित होकर स्वर्ग लोक को लौट गए। नारद मुनि के आदेश अनुसार युद्ध क्षेत्र में जितने भी असुर बचे थे वे सब बलि महाराज को, जिनकी अवस्था अत्यंत गंभीर थी, अस्तगिरी ले गए। उस पर्वत पर शुक्राचार्य ने उन सारे मृत असुर सैनिकों को, जिनके सिर धड़ तथा हाथ पांव कटे नहीं थे, जीवित कर दिया। उन्होंने अपने संजीवनी मंत्र के द्वारा यह सब किया। और फिर पांचवा श्लोक, बलि महाराज वैश्विक कार्यों में अत्यंत अनुभवी थे। जब शुक्राचार्य की कृपा से उन्हें होश आया और उनकी स्मृति लौट आई तो जो कुछ हो चुका था उसे वे समझ गए, इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें शोक नहीं हुआ। ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभृष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदामयं ददाति स्वपदार्थिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साधुजातं सहजनारघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहजनामलितां श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरपुरुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम सभी को स्वागत करते हैं श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और बहुत दिनों के बाद ये असुर और देवताओं के बीच में जो युद्ध है वो आज समाप्त हो रहे हैं, और इसलिए सब देवतागण बहुत प्रसन्न होकर स्वर्ग लोक लौट गए, क्योंकि वो तो जीत गए। सभी असुरगण मारे गए, थोड़े कुछ बचे थे बलि महाराज के साथ। तो वो एक अस्तगिरी नाम पर्वत वहां पर वो चले गए बलि महाराज को लेकर, और वहां पर हालांकि ये देवताओं ने बहुत मेहनत करके इतने सारे असुरों को मारे थे, लेकिन शुक्राचार्य ने बहुत सारे असुरों को पुनर्जीवित कर दिया। और बल महाराज भी जो बहुत ही घायल हुए थे, कमजोर हुए थे, शुक्राचार्य की कृपा से उनको भी होश आया, स्मृति लौट आई। तो इस प्रकार बलि महाराज का जो शक्ति है वो भी पुनः आ गया। तो यहां पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार बलि महाराज को फिर से इंद्रिय स्मृति वापस आई, और वापस आने के बाद वो सब कुछ समझ में आ गया उनको, और बिल्कुल शोक नहीं किया उन्होंने। हालांकि एक दृष्टिकोण से पूरी तरह से हार गए बलि महाराज, लेकिन फिर भी शोक नहीं किया। और यहां श्लोक में बताया गया है लोक तत्व विचक्षण, तो बलि महाराज को कहा गया है सांसारिक कार्यों में अत्यंत अनुभवी होने के कारण, तो अनुभवी होने के कारण उन्होंने शोक नहीं किया। तो हालांकि एक असुर थे, लेकिन फिर भी यहां पर बताया जा रहा है कि बहुत ही अनुभवी थे। कैसे पता चलता है कि वो अनुभवी थे? कि उन्होंने इस युद्ध में हार जाने पर भी उनका रिएक्शन क्या था, इससे पता चलता है कि वो अनुभवी थे, एक्सपीरियंस्ड इन मटेरियल सब्जेक्ट, यूनिवर्सल सब्जेक्ट मैटर, सांसारिक कार्यों में। तो 1969 में हम जानते हैं किस प्रकार श्री प्रभुपाद ने उनके तीन कपल्स को उन्होंने भेजा था लंदन प्रचार शुरू करने के लिए, और बहुत कठिनाइयों के बाद उन्होंने ये प्रचार शुरू की लंदन में। और कुछ समय के बाद उन्होंने प्लान किया था कि हम एक रथ यात्रा का आयोजन करेंगे। तो श्याम सुंदर प्रभु उन्होंने यह सेवा ली रथ को तैयार करने के लिए। तो बहुत बड़ा विशाल रथ, तो उन्होंने जो वहां के अथॉरिटीज थे उनसे उन्होंने परमिशन ली रथ यात्रा के लिए, लेकिन उनको रथ यात्रा के लिए कुछ ही समय के लिए परमिशन, कुछ ही समय के, दिन में कुछ समय के लिए, दिन में केवल कुछ समय के लिए वो रथ सड़क पर हो सकता था। तो इसलिए रथ तैयार करने के लिए श्याम सुंदर प्रभु को कई शहर से बाहर जाना पड़ा उस रथ को तैयार करने के लिए। तो कुछ एक महीने तक करीब बहुत कठोर परिश्रम करके, ज्यादा कुछ मदद वाले कुछ नहीं था, उन्होंने इस रथ को तैयार किया। और जिस दिन रथ यात्रा होने वाला थी उसी दिन सुबह के समय वो वहां से शहर से बाहर उस जगह से जहां रथ यात्रा शुरू होने वाली थी वहां तक उसको ट्रांसपोर्ट करना था, लेकिन ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास केवल एक छोटी सी वैन थी। तो किसी ना किसी तरह से उस वैन को उन्होंने रथ यात्रा को लगा दिया, और फिर वो वैन खींचने लगा, लेकिन वैन का कुछ पावर नहीं था खींचने के लिए, बहुत बड़ा रथ। तो धीरे धीरे जा रहा था, तो वो जो सड़क पर लोग थे उनको वो बुलाते थे कृपया करी मदद करो, थोड़ा धक्का मारो इस रथ को। तो लोग देखते थे बेचारे के भक्त लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए बीच बीच में कुछ लोग धक्का मारते थे, थोड़ा और आगे जाते थे भक्त, और फिर कुछ और लोगों को मदद देते थे। इस तरह धीरे धीरे गोरख जो है उस जगह पर पहुंच गया। तो एक महीना का दिन रात का परिश्रम था श्याम सुंदर ध्रुव की। तो जैसे ही श्याम सुंदर ध्रुव अपना मंदिर पहुंच गए तो वो तुरंत आराम करने चले गए। तो अभी बाकी भक्त लोगों को मैनेज करना था अभी ये रथ यात्रा को। तो सही समय पर यात्रा शुरू हुई, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि उन्होंने बहुत विज्ञापन की थी, बहुत एडवर्टाइजमेंट की, बहुत फ्लायर्स इत्यादि बांटे, तो बहुत सारे लोग आ गए। तो लोग खींचना शुरू किए, जय श्री श्रीनाथ राधाकृष्ण भगवान श्री कृष्ण बलराम। तो लोग खींचना शुरू किए रथ को, और थोड़े समय के बाद कुछ डिस्टेंस कवर, बहुत कम डिस्टेंस कवर होते हुए तुरंत उस रथ के जो पहिए जो हैं, व्हील्स जो हैं, वो टूट गए, और जो बड़ा सा विशाल रथ जो था नीचे गिर गया। तो भी वहां बहुत सारे पुलिस लोग थे, तो पुलिस लोग ने देखा ये तो बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम होने वाला है, रस्ते के बीच में ये बहुत बड़ा विशाल रथ रस्ते पर, तो लंदन का ट्रैफिक दिन के समय तो दिल्ली से भी खतरनाक है। तो पुलिस वालों ने कहा तुरंत साफ कर दो, इसको निकाल दो। तो अभी श्याम सुंदर प्रभु जिन्होंने तैयार किया था, जो इंजीनियर थे वो नहीं थे वहां पर, वो तो सो रहे थे। अभी इसको डिसमेंटल कैसे करना है बाकी पत्नों को पता नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी प्रकार से उन बहुत लोग इकट्ठा होकर उस रथ को तोड़ दिया। और ऑफकोर्स श्याम सुंदर प्रभु को उन्होंने समाचार भेजा कि देखो इस प्रकार रथ टूट गया, कुछ तो करो अभी। लेकिन वो तो आराम कर रहे थे, वो कुछ होश में नहीं थे। तो भक्तों ने उसको तोड़ दिया, और फिर उसको तोड़ के फिर जो भी जितने भी चीज है उस सारी चीजों को एक ट्रक में लोड करना था, और कहीं दूर जाकर वो सब चीजों को फेंकना था। तो वहां की जो माता जी लोग थी, मावती माता जी, यमुना माता जी, जानकी माता जी, तो उन्होंने क्या किया, जो रथ का जो ऊपर का जो बड़ा कपड़ा होता है उस कपड़ा को ले लिया, और उस कपड़ा के तीन टुकड़े किए, और तीन टुकड़े करके उसको एक तीन कपड़े के टुकड़ों में उन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा उस कपड़े के टुकड़ों पर रख दिया और चल दिए। और वैसे ही उन्होंने कैसे तो भी वो रथ यात्रा जो है उन्होंने संपन्न किया। तो लोगों को, वैसे ये लंदन में पहली रथ यात्रा थी, तो लोगों को वास्तव में पता ही नहीं था कि रथ यात्रा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो कुछ लोगों ने सोचा शायद इसी प्रकार। तो लेकिन बहुत लोग बहुत निराश थे कि उन्होंने जो पहले प्रयास किया उन्होंने इस रथ यात्रा को आयोजित करने के लिए श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, वो सफल नहीं हुआ, तो बहुत ही निराश थे। और उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को यह समाचार उन्होंने भेजा कि इस प्रकार अभी जब श्री प्रभुपाद जी ने सुना इस बात को, तो श्री प्रभुपाद जी का रिएक्शन क्या था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो श्री प्रभुपाद जी एक पत्र लिखते हैं, दो पत्र लिखते हैं, एक गुरुदास प्रभु को और एक श्याम सुंदर प्रभु को। तो प्रभुपाद जी उस समय लॉस एंजलिस में थे और वहां से श्री प्रभुपाद जी पत्र लिखते हैं। तो मैं पूरा पत्र नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन उसका जो महत्वपूर्ण भाग है वो मैं पढ़ रहा हूं। तो ये है 31 जुलाई 1969। तो श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं गुरुदासपुर को। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा क्योंकि ये इंग्लिश में है, और फिर मैं ट्रांसलेट करूंगा। I had not received any detailed information either from you or from others, but even if the festival was not properly performed, you should not be discouraged. As in the material world, sometimes failure is considered as a pillar of success. Similarly, in the spiritual order also, the same principle can be applied. So don't be disappointed. Maybe Krishna's desire is something higher in this connection. तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मुझे तो कुछ डिटेल खबर नहीं मिला है कि एग्जैक्टली क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर ये जो रथ यात्रा है, ये महोत्सव है, ठीक से संपन्न नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आप लोगों को डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत में कहा जाता है कि जो फेलियर है वो सक्सेस का एक पिलर है, सक्सेस का एक स्तंभ बन जाता है। जब किसी व्यक्ति को सफलता असफलता प्राप्त होती है, वो सफल नहीं होता है, लेकिन ये असफलता जो है ये सफलता के लिए एक खंभा बन जाता है। तो ये भौतिक जगत में इस प्रकार माना जाता है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन यह सिद्धांत जो है ये आध्यात्मिक क्षेत्र में भी लागू होता है, तो इसलिए निराश मत हो। हो सकता है कि भगवान का कुछ दूसरी इच्छा है, भगवान जानते हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद जी लिखते हैं गुरुदास प्रभु को। और फिर श्री प्रभुपाद जी श्याम सुंदर प्रभु को लिखते हैं, बट इन एनी इवेंट आई थिंक वी मे टेक इट एज कृष्णास ग्रेस दैट द डिफिकल्टी टू प्लेस एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेशन एंड नॉट लेटर ऑन व्हेन द रथ वाज इन अ मोर पॉपुलेटेड एरिया, सो डू नॉट फील डिस्करेज्ड एट ऑल। बट कृष्णास प्लान एवरीथिंग विल कम आउट फॉर द बेस्ट। We have only to work very sincerely, depending fully on the mercy of the Lord, and in this consciousness, we can make very quick advancement in Krishna consciousness. If you think you'll be able to perform the ceremony on Janmashtami day, then I shall give you further instructions on how this is to be done. तो बाबा जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि वास्तव में ये भगवान की कृपा है कि ये जो रथ जो है शुरुआत में ही टूट गई। तो श्री प्रभुपाद उस असफलता को, उस असफलता में भी भगवान की कृपा को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छा है कि पहले ही टूट गया। अगर बाद में होता, जब बहुत ज्यादा भीड़ है, तो फिर और भी मुश्किल परिस्थिति होती है। तो इसलिए निराश मत हो और भगवान की कृपा से, भगवान के प्लान से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आगे लिखते हैं कि हमें केवल सिंसियरली, केवल प्रामाणिकता से काम करना चाहिए और भगवान की कृपा पर पूरी तरह से निर्भर होना चाहिए। अगर हम इस क्षेत्र में रहते हैं तो फिर हम बहुत जल्दी ही कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो, हालांकि भक्तों को लग रहा था कि ये जो घटना जो है, ये रथ यात्रा का जो फेस्टिवल है, ये सफल नहीं हुआ है, ये फेलियर हुआ है। लेकिन हम देख सकते हैं कि किस प्रकार श्री प्रभुपाद जी, हम देख सकते हैं कि उन्होंने डांटा नहीं उनको। उन्होंने ये नहीं कहा, हालांकि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शायद आप लोगों ने ये ठीक से अंदाज नहीं लगाया है कि ये इतना बड़ा रथ है और ये जो व्हील्स जो है क्या इस वेट को वो ले सकते हैं या नहीं, प्रभुपाद जी लिखते हैं। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने उनको डांटा नहीं। उन्होंने यह नहीं कहा कि आप तो मूर्ख लोग, इतना भी नहीं समझते, ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी उनको एनकरेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान का प्लान है और जो भी भगवान का प्लान है वो अच्छा के लिए होता है। इस प्रकार प्रभुपाद जी उनको एनकरेज कर रहे हैं। तो इस प्रकार यहां पर भी हम देखते हैं कि बलि महाराज हालांकि बुरी तरह से हार गए इस युद्ध में, लेकिन फिर भी उन्होंने शोक नहीं किया। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है, जब वो सत्वगुण में होता है वो किस प्रकार कार्य करता है, जब वो रजोगुण में होता है वो किस प्रकार कार्य करता है। तो भगवान 18वां अध्याय के 26वां श्लोक में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। और प्रभा जी किताब पर लिख रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, कृष्ण भावनामय व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है। उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती, वह सदैव उत्साह पूर्ण रहता है। वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता, वह सुख दुख में समभाव रहता है। ऐसा करता सात्विक है। और जो राजसिक होता है, जो करता कर्म तथा कर्मफल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। तो इस प्रकार जो सत्वगुण में होता है वो अपना जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को हर परिस्थिति में वो करता रहता है। परिणाम कुछ भी हो, सफलता असफलता जो भी हो परिणाम, लेकिन जो सत्वगुण में है ऐसा व्यक्ति अपना कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ता है। वो अपना जो फल है, कर्म फल है, उस कर्म फल से आसक्त नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो अहंकार रहित है। ये मिथ्या अहंकार नहीं है। वो इस प्रकार नहीं सोचता है कि मैं करता हूं, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, इस प्रकार नहीं सोचता है। वो केवल अपना कर्तव्य करता है और जो भी परिणाम है वो पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर रहता है, जिस प्रकार प्रभुपाद इस पत्र में लिख रहे हैं। लेकिन जो राजसिक होता है, रजोगुण से प्रभावित होता है, वो कर्म फल से आसक्त रहता है और वो सोचता है मिथ्या अहंकार के कारण वो सोचता है कि मैं करता हूं और इसलिए वो फल से आसक्त रहता है और उस फल को प्राप्त करने के लिए हम तो यहां पर बता गए अशुचि, जो भी चीटिंग करना है, जो भी करना है वो करने के लिए तैयार होता है। क्यों? क्योंकि फल से आसक्त है। किसी ना किसी प्रकार से मुझे फल चाहिए, इस कर्म फल चाहिए, ये है रजोगुण। लेकिन हम शास्त्र में अनेक उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो फल से आसक्त नहीं होता है। वो जानता है कि वास्तव में जो फल जो है वो मेरे हाथों में है ही नहीं। तो इसलिए हम देखते हैं, जैसे प्रभुपाद जी यहां पर लिख रहे हैं, इन द मटीरियल वर्ल्ड फेलियर इज कंसिडर्ड टू बी अ पिलर ऑफ सक्सेस। और ये सिद्धांत जो है आध्यात्मिक जीवन में भी लागू होता है, या ऐसा भी कहा जाता है फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। लेकिन क्या यह फेलियर जो है, यह परिस्थिति जो है, क्या वह स्टेपिंग स्टोन है या क्या वह स्टम्बलिंग ब्लॉक है, वो हमारी चेतना के ऊपर निर्भर है। क्या यह असफलता जो है, क्या यह एक प्रोत्साहन का कारण है आगे बढ़ने के लिए, या एक निराशा का कारण है, एक या एक बाधा है, एक रुकावट है, क्या है ये परिस्थिति, वो हमारी चेतना के ऊपर निर्भर होती है। उदाहरण दिया जाता है, जैसे कि अगर ये ग्लास है इसमें पानी आधा भरा हुआ है, या तो हम कह सकते हैं कि यह ग्लास आधा खाली है, या तो हम कह सकते हैं ये आधा भरा हुआ है, इधर हाफ फुल और हाफ एम्प्टी, इट इज सेम थिंग, वही चीज है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण क्या है उसके ऊपर निर्भर रहता है। लेकिन जो बुद्धिमान है, जो वास्तव में जानते हैं, जिनके पास ज्ञान है, ज्ञान चक्षुष, उस प्रकार का व्यक्ति जो है, ये और एक अंग्रेजी कहावत है, he sees the invisible, feels the intangible to achieve the impossible। जब वो असफलता को देखता है, जब वो परिस्थिति जो है ऐसा लगता है कि वह सफलता के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन वो देख सकता है, क्या देख सकता है, जो नहीं देखा जा सकता है। He sees the invisible, he feels the intangible, जो बुद्धि से परे है, जो समझा नहीं जा सकता है उसको वो समझता है, और उसका परिणाम क्या है, जो असंभव चीज है वो संभव करके दिखाता है। इट्स अ गुड रिडल। कहने का मतलब यह है, जो व्यक्ति देखता है समझता है कि हालांकि मुझे पता नहीं हो रहा है, लेकिन इसके पीछे जरूर भगवान का प्लान है, मुझे दिख नहीं रहा है, मेरी बुद्धि से परे है, लेकिन वास्तव में जरूर इस घटना के पीछे, इस असफलता के पीछे जरूर भगवान का कुछ ना कुछ प्लान है। जिस इस प्रकार व्यक्ति सोचता है तो वो अपने उत्साह को कभी खोता नहीं है, अपने उत्साह को बनाए रखता है, और उत्साह के साथ जब वो कार्य में आगे बढ़ता है तो फिर सफलता निश्चित है। तो इस भौतिक जगत में भी इस सिद्धांत के लिए फेलियर्स द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, इस सिद्धांत के लिए अनेक उदाहरण हैं भौतिक जगत में भी। आप सब लोग परिचित होंगे, बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट थे थॉमस एडिसन। कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार करने के लिए कुछ 800 बार असफल हुए, लेकिन फिर भी हताश नहीं हुए। तो जब उनको पूछा गया कि इतनी बार असफलता लेकिन आपने उत्साह को खोया नहीं, क्या बात है, अजीब सा लग रहा है। कभी हम देखते हैं लोग एक बार दो बार सफल नहीं होते छोड़ देते, छोड़ो अरे ये तो मेरे बस की बात नहीं है। 800 बार सोचिए जरा, 800 बार प्रयास करने के बाद भी उत्साह बना रखना साधारण बात नहीं है। तो जब पूछा गया उनको, उन्होंने कहा कि इससे मैंने 800 बार मैंने सीखा कि क्या नहीं करना चाहिए, वो मैंने सीखा। 800 टाइम्स आई अंडरस्टूड व्हाट नॉट टू डू। तो हमारी चेतना के ऊपर निर्भर रहता है कि उस परिस्थिति को हम किस दृष्टिकोण से देखें। क्या हम ज्ञान के साथ उस परिस्थिति को देखते हैं या हम अज्ञानता के साथ उस परिस्थिति को देखते हैं। उदाहरण दिया जाता है जैसे कि अगर बारिश का मौसम है और कभी लोग कह सकते हैं ये बारिश का मौसम है, बहुत इनकन्वीनियंस है, असुविधा है, हम कुछ नहीं कर सकते बाहर, कुछ एंजॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है ये इनकन्वीनियंस है, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम यह होता है कि इतने सारे फल फूल धान्य सब उगते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि इस परिस्थिति का परिणाम क्या निकलने वाला है जो अभी मैं नहीं देख पा रहा हूं, टू सी द इनविजिबल दैट इज गोइंग टू कम इन द फ्यूचर। तो अगर मैं लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए मैं कार्य करता हूं कि इस परिस्थिति का परिणाम क्या होने वाला है, अगर लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए मैं उत्साह को कभी नहीं छोड़ता हूं तो फिर मैं सफल होगा। तो पॉइंट यह है कि ये जो असफलता जो है इसको हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी ठीक है, एक सफलता के लिए एक अवसर के रूप में हमें देखनी चाहिए। तो अंग्रेज में कहते हैं अपॉर्चुनिटी नॉट बट समथिंग इट इज अ डिस्टर्बेंस। तो जब इस प्रकार की परिस्थिति जीवन में आते हैं तो ये वास्तव में क्या है, सफलता के लिए अपॉर्चुनिटी अवसर है, लेकिन जो बुद्धिमान नहीं है वो सोचते हैं ये डिस्टर्बेंस है, एक बाधा है, रुकावट है। तो इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है ये चीजों को समझने के लिए। शास्त्र में अनेक उदाहरण है इसलिए, और उनके उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि जो महान आचार्यगण हैं, जो महान भक्त हैं, उन्होंने ऐसी परिस्थितियों को जो लग रहे थे कि वो असफलता है, उस समय उन्होंने किस दृष्टिकोण से, किस चेतना से उन्होंने इन परिस्थितियों को देखा। तो इसलिए भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि जो स्थितप्रज्ञ होता है, स्थितप्रज्ञ जिनका बुद्धि स्थिर है, उनके लक्षण भगवान बताते हैं। एक प्रश्न अर्जुन पूछते हैं भगवान को, स्थित प्रज्ञा का भाषा, उनकी भाषा क्या है। इस प्रश्न का मतलब यह है कि इस भौतिक जगत के जो दुविधाएं हैं, डुअलिटीज हैं, ऐसे परिस्थितियों में एक स्थित प्रज्ञा किस प्रकार, किस तरह बर्ताव करता है। और इसके ऊपर में भगवान कहते हैं दुखेषु विघ्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोध स्थितिदीन निरुक्षते। भगवान कहते हैं कि ऐसा स्थितिदीन जो है, स्थित प्रज्ञ जो है, वो किस प्रकार बर्ताव करता है? दुखेषु अनुद्विग्नमनः, जब दुख की परिस्थितियां आते हैं तो उनका मन जो है वो विचलित नहीं होता है, अनुद्विग्न। और सुखेषु विगतस्पृह, और सुख की परिस्थितियों में भी वो अत्यधिक हर्षित हर्षित नहीं होता है। दोनों परिस्थितियों को वो भगवान की कृपा के रूप में देख सकता है। दुख के परिस्थितियों में वो सोचता है कि वास्तव में मेरे कर्मों के अनुसार और बहुत सारे कष्ट आए थे, लेकिन भगवान की कृपा से उन्होंने कम करके दिया है। और सुख के परिस्थितियों में वो सोचता है कि वास्तव में मैं योग्य नहीं हूं इस सुखदायक परिस्थिति के लिए, लेकिन ये भगवान की कृपा है ताकि मैं उनके लिए कुछ सेवा कर पाऊं, इस प्रकार भक्त सोचता है। तो प्रभा जी कहते हैं कि जो भौतिकवादी लोग होते हैं ऐसे परिस्थिति में, दुख की परिस्थितियों में बहुत ही हताश हो जाते हैं, और सुख की परिस्थितियों में बहुत ही हर्षित होते हैं, उछलने कूदने लगते हैं। प्रभा जी उदाहरण देते हैं कि एक बार एक व्यक्ति को कुछ 1 करोड़ रुपया मिल गया डॉक्टरी में, ऐसा नाचने लगा, कूदने लगा, हार्ट अटैक आकर मर गया। लेकिन जो भक्तजन होते हैं वो इस प्रकार नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि ये भी भगवान की कृपा है। तो हम देख सकते हैं शास्त्रों में कि किस प्रकार अनेक उदाहरण हैं महान भक्तों का, जिन्होंने अपने उदाहरण से प्रस्तुत किया कि अलग अलग परिस्थितियों में भक्तों को किस प्रकार बर्ताव करनी चाहिए। एक ज्वलंत उदाहरण है पांडवों का। तो हम सब जानते हैं कि किस प्रकार पांडव लोग जो पूरी तरह से धर्म का पालन कर रहे थे, सत्य का पालन कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कितने सारे तकलीफें, कितने सारे क्लेश। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब भीष्मदेव युद्ध भूमि पर बाणों के शैया पर लेटे हुए थे, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण और सभी पांडव लोग वहां पर पहुंच जाते हैं भीष्मदेव का दर्शन करने के लिए। और सैकड़ों संतगण ऋषिगण आते हैं वहां पर, क्योंकि एक महाजन महान भक्त भीष्मदेव अपना शरीर छोड़ने वाले हैं। और भीष्मदेव पांडवों को देखकर प्रसन्न होते हैं कि अंत में जो धर्म का पालन करने वाले जो पांडव लोग हैं उनको राज्य प्राप्त हुआ है। लेकिन फिर भी भीष्मदेव कहते हैं अहो कष्टम अहो अन्यायम यद् यूयम् धर्मनन्दनः जीवितुं नार्हति क्लिष्टं विप्रधर्म अच्युताश्रयः। भीष्मदेव कहते हैं अहो कष्टम अहो अन्यायम, कितना कष्ट, कितना अन्याय हो गया है आप लोगों से। वास्तव में जो कष्ट हुआ है, जो अन्याय हुआ है, इसका परिणाम यह होना चाहिए कि वास्तव में तुम लोग जीवित भी नहीं रह सकते हैं। जीवितम न था, लेकिन फिर भी धर्म विप्र धर्म अच्युत, जो ब्राह्मण है, जो धर्म है और अच्युत भगवान श्री कृष्ण है,
उन्होंने आपकी रक्षा की, तो इसलिए आप लोग जीवित हैं। और आगे भीष्मदेव कहते हैं कि वास्तव में ये सब काल का परिणाम है। जिस प्रकार जो बादल हैं, जो बादल ढकले जाते हैं वायु के द्वारा, तो बादल को हिलना ही पड़ता है, तो उसी प्रकार काल के अनुसार व्यक्ति के जीवन में अनेक सारी घटनाएं घटती हैं। और ये काल जो है, भगवान भगवद गीता में बताते हैं काल रोशनी, ये काल जो है भगवान से अभिन्न है। तो इसलिए भगवान के प्लान के अनुसार हर एक व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख और अनेक सारी घटनाएं घटती हैं कि कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है। आगे विष्णुदेव कहते हैं कि हालांकि आपके पक्ष में युधिष्ठिर महाराज थे, जो स्वयं धर्मराज हैं, पूरी तरह से धर्म को जानते हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं, स्वयं प्रकोदर भीम है, और जो गांधी का को धारण करने वाले अर्जुन हैं, और उतना ही नहीं स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपके पक्ष में थे, लेकिन फिर भी आपके जीवन में इतने सारे क्लेश कौन समझ सकता है। इसलिए भीष्मदेव कहते हैं कि जो महान विद्वान है, दार्शनिक है, वो भी वास्तव में भगवान का प्लान, भगवान का आयोजन को नहीं समझ पाते हैं। और इसलिए श्री प्रभुपाद एक बहुत ही सुंदर सेंटेंस लिखते हैं। वो कहते हैं एज लॉन्ग एज अ पर्सन इज फुल्ली इन कोऑपरेशन विद द विशेस ऑफ द लॉर्ड, guided by glorified brahmanas and vaishnavas, strictly following religious principles, one has no cause for despondency, however trying the circumstances of life. तो बाबा जी लिख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से भगवान की इच्छाओं के अनुसार, भगवान की इच्छाओं के अनुसार सहयोग करते हुए वो कार्य कर रहा है, साथ में जो अधिकृत ब्राह्मण और वैष्णव है उनके मार्गदर्शन के अनुसार वो कार्य कर रहा है, तीसरा चीज है वो पूरी तरह से धर्म के सिद्धांतों को पालन कर रहा है। तो प्रभुपाद जी तीन चीज यहां पर बता रहे हैं, अगर व्यक्ति पूरी तरह से भगवान की इच्छाओं के अनुसार, भगवान की इच्छाओं के अनुसार सहयोग कर रहा है, वो ब्राह्मण और वैष्णव के मार्गदर्शन में चल रहा है, और स्ट्रिक्टली अच्छी तरह से धर्म के नियमों को पालन कर रहा है, तो फिर हताश होने की जरूरत नहीं है, कितने भी क्लेश जीवन में क्यों ना आए। तो इस प्रकार भीष्मदेव बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं पांडवों को, युधिष्ठिर महाराज को, यह समझाने के लिए कि अगर व्यक्ति पूरी तरह से धर्म का पालन कर रहा है, भगवान के आदेश के अनुसार कार्य कर रहा है, और ये सब करते हुए भी अगर जीवन में बहुत सारे क्लेश तकलीफें आ रही हैं, तो यह समझना चाहिए कि यह जरूर भगवान का ही प्लान है, भगवान का ही आयोजन है। मैं नहीं समझ सकता हूं, लेकिन जरूर इसके पीछे भगवान का प्लान है। और इसलिए वो हताश न होकर, उत्साह न होकर, पूरी उत्साह के साथ अपना कर्तव्य करते रहता है। उसी प्रकार जब चित्रकेतु महाराज को माता पार्वती ने शाप दिया, तो स्वयं शंकरदर्शन भगवान का दर्शन करने के बाद चित्रकेतु महाराज को माता पार्वती ने शाप दिया इस भौतिक जगत में असुर बनने के लिए। देखिए
भगवान का दर्शन हुआ, कितनी आध्यात्मिक प्रगति। लेकिन उस स्तर से डायरेक्टली भौतिक जगत में असुर। सोचने वाली बात है, 20 साल 30 साल भक्ति करने के बाद अगर किसको बताया जाए अभी तुमने असुर बनना होगा, व्यक्ति को लग गया अरे पूरा खत्म हो गया, इतनी मेहनत की, इतनी भक्ति की, इतने सारे मंगलारती, इतना सारे जप, सब गया खड्डे में, कुछ काम का नहीं है। देखिए यहां पर कितने उन्नत भक्त, शुद्ध भक्त। और यहां माता पार्वती शाप दे रही, असुर बन जाओ। लेकिन जब चित्रकेतु महाराज इस शाप को सुनते हैं, क्या बर्ताव था, तुरंत चित्रकेतु महाराज नीचे आ गए और माता पार्वती के समक्ष अपने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, धन्यवाद, थैंक यू फॉर द कर्स। तो कहते हैं कि जो भी आपने किया सही किया, और कहते हैं संसार चक्र एतस्मिन् जन्तु अज्ञान मोहिता भ्राम्यं सुखं च दुःखं च भुङ्क्ते सर्वत्र सर्वदा। कहते हैं कि जंतु ये जीवात्मा जो है ये संसार चक्र में घूम रहे हैं अज्ञानता की वजह से, अज्ञान मोहिता, अज्ञान में मोहित होकर सभी जीवात्मा इस संसार चक्र में घूम रहे हैं। कभी उनको दुख का अनुभव होता है, कभी उनको सुख का अनुभव होता है, सर्वत्र सर्वदा, कभी भी हो इस भौतिक जगत में, कभी भी हो, ये द्वंद स्थितियां जो है, ये डुअलिटीज जो है हमेशा के लिए रहेगी, कोई बंद नहीं कर सकता है। तो इसलिए आपका कोई दोष नहीं है, ये मेरे कर्मों के अनुसार ये सब कुछ हो रहा है। इस प्रकार चित्रकेत महाराज कहते हैं। और इस प्रकार जब चित्रकेत महाराज शोक नहीं करते हैं, बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं होते हैं, तो उस समय भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, देखिए देखिए वैष्णव का गुण। तुम सोच रही हो कि तुम बहुत शक्तिशाली है शाप देने के लिए, तुम बहुत सुंदर हो, शक्तिशाली हो, लेकिन ये वैष्णव की सुंदरता देखिए, ये वैष्णव का गुण देखिए। नारायण परा सर्वे न कुदर्शन विद्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शना। देखिए वैष्णव किसी भी परिस्थिति में, स्वर्ग हो नरक हो भूमि कहीं भी हो, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, इसलिए हर एक परिस्थिति में वो बिना कुछ शोक किए या हर एक परिस्थिति में सदृष्टि से वो देख सकते हैं। इस प्रकार भगवान शिव जी गुणगान करते हैं और वो कहते हैं, भगवान शिव आगे समझाते हैं कि वास्तव में इस भौतिक जगत का जो सुख दुख है वो किस प्रकार है। इसको समझाने के लिए वे एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण देते हैं कि अगर कोई सोचता है ये फूल की माला है या पड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति दूर से देखता है इसको और वो सोचता है सांप है, तो क्या होगा, तुरंत डर जाता है। तो अज्ञानता के वजह से जब व्यक्ति उस फूल की माला को सर्प सोचता है, तुरंत भयभीत हो जाता है। उसी प्रकार इस भौतिक जगत के सुख और दुख स्वप्न की तरह है। जैसे कि कभी कभी अगर हम स्वप्न में देखते हैं कि कोई हमें स्वीट ड्रेस खिला रहा है, तो कभी कभी हम देखते हैं कुछ लोग स्वप्न में हंसते हैं, तो अगर इस प्रकार का स्वप्न आता है कि कोई बहुत प्रेम से स्वीट ड्रेस खिला रहा है, तो स्वप्न में भी हम हंसेंगे। और अगर उस स्वप्न में हम देखते हैं कि मेरे पीछे एक भाग है, सिंह है, तो हम जोर से चिल्लाते हैं, चीखते हैं, लेकिन वास्तव स्थिति क्या है? न तो स्वीट राइस है न सिंह है। तो क्योंकि हम अज्ञानता में हैं, हम भ्रमित स्थिति में हैं, इसलिए हम उन परिस्थितियों को फैक्चुअल हम सोचते हैं कि ये सच में है, और इस प्रकार सोचते हुए हमारा मन जो है या तो हर्षित होता है या शोक करता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह जो सुख और दुख जो है, ये नदी के लहरे के समान है। ये उदाहरण शिव जी देते हैं। तो नदी के लहर जो है, एक लहर आती है तो क्या वो परमानेंट होता है? नहीं, तुरंत चला जाता है। फिर उसी प्रकार हो सकता है कुछ समय दुख, लेकिन तुरंत उसके बाद वो दुख नहीं रहेगा, उस वो परिस्थिति नहीं रहेगी, वो चेंज होगा, बदल जाएगा परिस्थिति, कुछ और परिस्थिति आएगी। लेकिन इस भौतिक जगत में जो तथाकथित सुख है, वास्तव में वो सुख नहीं है, क्योंकि वो जो तथाकथित सुख है वो केवल बंधन का ही कारण बन जाता है। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, द्वैत भद्र अभद्र ज्ञान सब मन धर्म, एही भल एही मंद एही सब भ्रम। तो ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सब क्या है? केवल भ्रम है, क्योंकि वास्तव में ऐसा कुछ है ही नहीं। ये भौतिक जगत जो है, इसमें ये परिस्थितियां जो है वो बदलते रहती है। तो इसलिए मुख्य बात यह है कि हम हर परिस्थिति को ज्ञान चक्षुष, ज्ञान के दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए, फिर हम समझ पाएंगे, फिर हम सही चेतना में हम रह सकते हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हर परिस्थिति में हमें यह देखना चाहिए कि भगवान का क्या आयोजन है। जिस प्रकार चित्रकेतु महाराज के लिए यह भगवान की आयोजना थी कि चित्रकेतु महाराज जल्दी ही अपना भौतिक दुनिया, इस भौतिक दुनिया को त्याग कर भगवद्धाम वापस आ जाए, यह भगवान की योजना थी। उसी प्रकार परीक्षित महाराज समझ गए कि यह भगवान की योजना है कि यह श्रीमद् भागवतम प्रकट हो जाए। इसलिए परीक्षित महाराज ने विलाप नहीं किया, शोक नहीं किया। और परीक्षित महाराज जो उपस्थित संत ऋषियों से कहते हैं कि जो भी तक्षक हैं, जो भी हैं, आने दो, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं एक ही चीज चाहता हूं कि आप लोग जो है वो निरंतर कृष्ण कथा करते रहिए, और अगर मैं पुनः इस भौतिक जगत में आना है तो भी कुछ परवाह नहीं है, लेकिन मैं ये आशीर्वाद चाहता हूं कि मुझे तीन चीज प्राप्त हो। क्या है ये तीन चीज? वो प्रार्थना करते हैं कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह से आसक्ति हो, मुझे हमेशा भक्तों की संगति हो, और सभी जीवात्माओं से मित्रता हो, कंप्लीट अटैचमेंट टू कृष्ण, association with devotees and friendly relations with all living beings. मैं केवल ये तीन चीज चाहता हूं. मैं तो इस भौतिक जगत में आने के लिए तैयार हूं, बार बार जन्म लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर ये तीन चीज है तो निश्चित है कि भगवान का विस्मृति नहीं होगी, भगवान का स्मरण निरंतर रहेगा. तो ये जीवन का लक्ष्य है, भगवान का स्मरण रहना, भगवान को कभी नहीं भूलना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है. परिस्थिति कुछ भी हो जाए, कुछ परवाह नहीं. इस प्रकार परीक्षित महाराज संत ऋषियों से ये आशीर्वाद मांगे, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे, जानते थे कि वास्तव में मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है. तो इसलिए हर परिस्थिति में भगवान का हाथ को देखना, भगवान का आयोजन को देखना, भगवान का प्लान को देखना. और किस प्रकार हम देख सकते हैं? गुरु के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से हम भगवान का प्लान को जान सकते हैं. तो इसलिए श्री प्रभुपाद इस तात्पर्य के अंत में लिख रहे हैं, कृष्ण भावना भाव हर व्यक्ति को हार जीत की परवाह न करके अपना कर्तव्य निभाना चाहिए. मनुष्य को कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु द्वारा आदेशित अपना कर्तव्य करना चाहिए. अनुकूलेन कृष्णानु शीलनं भक्ति उत्तम. उत्तम भक्ति में मनुष्य सदा कृष्ण की इच्छा तथा आदेशों का पालन करता है. तो अगर भक्त हमेशा हर परिस्थिति में कृष्ण और गुरु के आदेशों का पालन करते रहता है तो निश्चित रूप से वो सफल हो जाएगा. तो इसलिए भक्त जो है हार जीत सफलता असफलता की परवाह नहीं करता है. केवल भक्त यही सोचता है कि क्या मैं गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर रहा हूं. और श्री प्रभुपाद जी ने वही किया. तो श्री प्रभुपाद जी के जीवन में हम जानते हैं, प्रभुपाद जी ने भारत में प्रयास किया प्रचार करने के लिए, सफल नहीं हुए. फिर बहुत कठिनाई के साथ अमेरिका गए, वहां पर एक दो साल के लिए कुछ सफलता नहीं मिली. जो एक व्यक्ति प्रभुपाद जी अपने गुरुवाई को लिखते हैं कि अभी एक व्यक्ति वैष्णव बन रहा है डेविड नाम का, और वही व्यक्ति प्रभुपाद जी को मानने आता है. प्रभुपाद जी रातों रात उस बावड़ी को छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन फिर भी क्या प्रभुपाद जी ने छोड़ा उस प्रयास को? आज हम इस काम की 50th एनिवर्सरी को मना रहे हैं. क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने उस प्रयास को कभी नहीं छोड़ा. सफलता या असफलता हर परिस्थिति में गुरु और भगवान को प्रसन्न करने के लिए श्री प्रभुपाद अपने प्रयास को जारी रखा, और इसलिए आज हम यहां पर उपस्थित हैं. और इस प्रेजेंटेशन को मैं अंत करूंगा. एक बहुत ही सुंदर लेटर श्री प्रभुपाद इस गोपाल कृष्ण महाराज को लिखते हैं. जब महाराज मॉन्ट्रियल से भारत आने वाले थे तो उस टाइम वो प्रभुपाद जी को अपना पूरा प्लान्स बताते हैं कि वो भारत आकर क्या करने वाले हैं. तो उस टाइम श्री प्रभुपाद ये लिखते हैं, कई चीज है लेकिन जो मुख्य पॉइंट से मैं बता रहा हूं. इन द भक्ति रसामृत सिंधु इट इज एंजॉइंड बाय श्री रूप गोस्वामी दैट एनी वर्क आइदर प्रिस्क्राइब्ड इन द वेदर्स और ऑर्डिनरी मंडेन एक्टिविटीज इफ द टारगेट इज टू सेटिस्फाई कृष्णा दैट एवरीथिंग इज डिवोशनल सर्विस. इन द श्रीमद् भागवतम आल्सो इट इज रेकमेंडेड बाय सुखदेव गोस्वामी दैट अल्टीमेट परफेक्शन ऑफ एन एंगेजमेंट इज टेस्टेड बाय द सेटिस्फैक्शन ऑफ द लॉर्ड. Our aim should be how to please Krishna. As it is said in English also, the ends justify the means. So it is my request to you that keep Krishna always in view and accept anything necessary for your worldly affairs. I am very pleased to note that in such things you consult me. This is a very nice habit. यू प्लीज ऑलवेज कंसल्ट मी बिफोर डूइंग एनीथिंग एंड आई शैल ट्राई टू गाइड यू टू माय बेस्ट एबिलिटीज. तो प्रभा जी लिख रहे हैं कि भद्र स्वामी सिंह में शुरू गोस्वाम बताते हैं कि किसी भी कार्य को अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है तो वो निश्चित रूप से भक्ति है. तो इसलिए श्रीमद्भागवत में शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि हर एक कार्य की परिपूर्णता है सबसे दिव्य हरि दोषण भगवान को प्रसन्न करना. उस इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि किस प्रकार मैं भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर रहा हूं. तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि अब हमेशा भगवान कृष्ण को याद रखते हुए उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना. और मैं बहुत प्रसन्न हूं कि हर एक चीज के लिए आप मुझे कंसल्ट कर रहे हो. ये बहुत अच्छी आदत है. तो इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले मुझे कंसल्ट कीजिए और मैं आपको मदद करने के लिए मैं पूरी तरह से प्रयास करूंगा. तो इस प्रकार श्री प्रभा जी बता रहे हैं कि इस प्रकार जब हम गुरु को कंसल्ट करते हुए गुरु को प्रसन्न करने के लिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं तो फिर हर परिस्थिति में सफलता विफलता जो भी हो हर परिस्थिति में अगर हम भगवान कृष्ण को केंद्र में रखते हुए अगर हम कार्य करते हैं तब निश्चित रूप से हम सफल हो सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. ठीक है कि इसको कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं.
धन्यवाद तुलसी. तो जैसे श्लोक में आया है बाली महाराज के बारे में कि वॉज वेरी एक्सपीरियंस्ड इन यूनिवर्सल अफेयर्स, इस वजह से उनको कोई लैमेंटेशन नहीं हुआ. तो इस चीज को कैसे समझा, अगर वो ऐसा भी आ सकता था कि आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत अनुभवी थे. जैसे आपने बताया कि मोड्स ऑफ नेचर के बारे में सतोगुण रजोगुण, वो तो एक असुर थे, हम उनको कैसे कह सकते हो सतोगुण में थे कि इसलिए आ सकते हैं. तो ये विशेष सिग्निफिकेंस है कि इसका.
तो क्या व्यक्ति अनुभवी है या नहीं वो परिणाम से हम देख सकते हैं कि व्यक्ति ने उस परिस्थिति में किस प्रकार बर्ताव किया. तो हालांकि एक भारी दृष्टिकोण से एक अशुभ थे लेकिन फिर भी क्योंकि वो प्रलय महाराज से संबंधित थे तो इसलिए उनके पास ज्ञान था अनुभव था और उस अनुभव की वजह से उस ज्ञान की वजह से वो इस परिस्थिति में भी हताश नहीं हुए शोक नहीं किए. तो अनुभव एक्सपीरियंस सो वन सो यस द एक्सपीरियंस दैट अबाउट द नेचर ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड अबाउट द नेचर ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस इन द मटीरियल वर्ल्ड सो हिज एक्सपीरियंस ऑन दैट. तो वो जानते हैं कि किस प्रकार ये भौतिक जगत के सुख और दुख किस प्रकार का है, वो अनुभव है. और हम ये कह सकते हैं क्योंकि प्रहलाद महाराज से संबंधित हैं तो इसलिए वो ज्ञान भी है और जो परिणाम है उससे हम समझ सकते हैं. इस मामले में
जो ईशोपनिषद अविद्या का प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है ये वही सिस्टम है यूनिवर्सल जो तत्व विचक्षण वन शुड नो बोथ विद्या एंड अविद्या. अविद्या मींस दिस यही है.
ऑफ कोर्स ईशोपनिषद में जो अविद्या के बारे में बताया गया है उसका मतलब यह है कि व्यक्ति को इस भौतिक जगत में अपने आत्मा और शरीर को साथ रखने के लिए किस प्रकार अपने निर्धारित कार्यों को करना है यह अविद्या है. तो ईशोपनिषद जो बताया जा रहा है वहां पर विद्या का मतलब है आत्मज्ञान और अविद्या का मतलब है इस शरीर को संभालने के लिए जो भी निर्धारित कार्य हैं प्रिस्क्राइब ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू वर्णाश्रम So how to keep body and soul together, that is avidya. So it has a slightly, of course, in one sense we can say almost the same, because
but how the material world works, how Maya Shakti works.
Okay, that is also accepted. Can be said that that's also to some extent included under avidya. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। समीर गौर भक्त वृंद की जय।